श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस 18 अक्टूबर के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो परम भाग्य से आज हम सब लोग कार्तिक महीने में बैठे हुए हैं। ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही कीमती जीवन है। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और इस जीवन का एक एक क्षण भी जो है वो बहुत पावरफुल है। एक एक क्षण भी शक्तिशाली है। बाकी जो जीव हैं, पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, मछली होते हैं, पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जीवन का समय जो है वो इतना कीमती नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनको कोई हम प्रवचन नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? 50 कुत्तों को बुलाकर बोलेंगे बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा बाद में, लेकिन फिर भी उनको बिठाकर हम लोग भगवान के विषय में कथा नहीं कर सकते। करेंगे तो भी वो सुनेंगे नहीं। लेकिन मनुष्य अगर कितना भी कम बुद्धि वाला होगा, समझो गरीब घराने का होगा, एकदम मागास वर्गीय होगा, फिर भी क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए उसको भगवान के विषय में उपदेश हो सकता है और वो समझ भी सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि होने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रामाणिकता होगी, मन अगर बहुत सिंसियर होगा तो वो समझ सकता है कि क्या उसके लिए कहा जा रहा है। हो सकता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको वो सिंपल सी बात समझ में नहीं आ जाए, लेकिन अगर हृदय अगर स्वच्छ है किसी का तो वो समझ सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और मनुष्य जीवन में अलग अलग प्रकार के समय आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर 15 दिन में एक एकादशी आती है ना, तो हर महीने दो एकादशी आती है। हर दिन एक पवित्र समय आता है, वो कभी होता है बताइए? ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय, सूर्योदय के 1 घंटा 32 मिनट पहले का समय जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें जो भी भगवान को पुकारता है बहुत ही उसका मन लगता है उसके अंदर उस समय, और उस समय भगवान भी बहुत ही अधिक अच्छी तरह से आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत पवित्र माना गया है। जो भगवान से कनेक्शन, अभी समझो गांव में गए तो बादल है, बहुत वर्षा हो रही है, तो हमारा मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलता है हमको, है ना, खराब हो जाता है कनेक्शन। उसी तरह से दिन में भगवान का कनेक्शन बहुत आसानी से ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होता है। तो दिन में एक पवित्र समय है, 15 दिन में एक पवित्र दिन है जो एकादशी कहलाते हैं, और 12 महीने में 4 महीने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भगवान को जोड़ने के लिए अनुकूल हैं। वो कौन से महीने हैं? चतुर्मास्य, आषाढ़ श्रावण, सॉरी आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, ये 4 महीने जो है चतुर्मास्य कहा जाता है। बाकी 12 महीनों में से ये 4 महीने अधिक भगवान के निकट होते हैं नेचुरली, प्राकृतिक स्वभाव से। उन 4 महीनों में से ये जो महीना है अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का, ये सबसे पावरफुल है। इसमें जो भी कुछ आदमी करेगा मनुष्य जीवन में उसको कई लाखों गुना लाभ मिलेगा उसका। समझो आपको किसी ने कहा कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे ना तो आपको 15 घंटा पढ़ाई करने का लाभ मिलेगा, उतना नॉलेज आपके दिमाग में चला जाएगा, तो कितने खुश हो जाएंगे आप लोग। अरे 15 घंटे के बदले में 1 ही घंटा पढ़ाई करना है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलता है हमको कि ऐसा ब्रेन में फिटिंग कर दो आप, एक इक्विपमेंट लगा दो ब्रेन में, 1 घंटे में 15 घंटे की पढ़ाई हो सकती है, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा है कि अगर इस अश्विन पूर्णिमा यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के 1 महीना में अगर आप एक बार भगवान का नाम लेते हो, हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको खाली हिंदू भगवान का नाम लेना है, अपने अपने भगवान का नाम लेंगे तो इस 30 दिन में आपको कई लाखों गुना उस भगवान का नाम लेने का लाभ मिलेगा। अगर आप एक बार लोगे तो, एक बार महामंत्र बोलोगे तो आपको कई लाखों बार बोलने का लाभ मिलेगा, एक माला जपोगे तो कई लाखों माला जाप करने का आपको लाभ मिलेगा। तो हमको पता है कि अगर हम 16 माला करते हैं जब, तो ये महीने में हमको कई लाखों माला दिन में करने का लाभ मिलता है। इसलिए समय की वैल्यू है, ये हर समय नहीं होता है। किसी दुकान में जाएंगे जनवरी में आप, तो आपको पैसा देंगे तो उस पैसे में 1 टी शर्ट मिलेगा, लेकिन दिवाली के समय जाओगे उतने पैसे में 4 टी शर्ट मिलेंगे, 1 टी शर्ट पे 3 फ्री। तो अगर आप फरवरी में जाके बोलोगे अरे आपने तो अक्टूबर में तो आपने 1 पर 3 दिया था, अभी क्यों नहीं देते, बोलते वो सेल का टाइम है तभी आने का, अभी नहीं मिलेगा वो, जब सेल लगेगा दोबारा तो आने का फिर। तो वैसा सेल दशहरे में लगता है, दिवाली लगता है, कभी क्रिसमस में भी लगता है, लेकिन हर रोज होता है क्या वो, नहीं होता है। उसी तरह से 12 महीने में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा कुछ करने पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देने वाले की मर्जी है ना वो। अभी देने वाले ने सोचा कि मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे सनराइज से लेकर सनसेट तक मैं जो भी आएगा उसको जो भी मांगा वो गिफ्ट दे देगा। उसके नेक्स्ट डे आएगा बोलेगा सर अब मैं कल आने को जरा लेट हो गया, मेरा ट्रेन लेट था इसलिए मैं आज पहुंच गया हूं। बोला मेरा बर्थडे कल था, अभी आज आपको नहीं मिलेगा। समय की वैल्यू होती है कि नहीं कुछ? और बहुत 56 भोग वाला आइटम आप आपको रात को 2 बजे खिलाएंगे किसको, तो वो कैसा खाएगा वो? अगर 6:30-7 बजे भूख लगे समय पर खाएगा, दोपहर को 11:30-12 के टाइम पे खाएगा तो अच्छी तरह से खा सकते हो, क्योंकि समय का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। समय अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। स्मशान में जाकर हम प्रेम के गीत नहीं गा सकते हैं क्योंकि वहाँ का प्रभाव अलग होता है। जवानी में जो कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते क्योंकि जवानी का एक समय का प्रभाव होता है। आज जवानी में आप लोगों को कुछ नर्सिंग किया, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, तो जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। 50-60 साल के बाद में वापस MD करने को जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ याद भी नहीं रहेगा और ना पढ़ाई करने का दिल भी रहेगा आपका, क्योंकि समय का अपनी अपनी जगह पर एक महत्व होता है। यही बात मैं आपको केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समय जो है ना वो हर समय जैसा हर समय नहीं होता है। अपन क्या बोलते हैं, समय बदल गया है, अभी हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, अभी समय बदल गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तभी आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप बोलेंगे हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, अभी देखो बच्चे लोग क्या करते हैं। क्योंकि समय बदलता है और समय का परिणाम भी बदलता है, उसके अनुसार हमको अपना अपना कार्य करना पड़ता है। लेकिन सबसे भाग्य की बात यह है कि जैसे समय आगे बढ़ता है कलयुग में समझो, तो सद्गुण जो है वो कम कम होते जाते हैं, और आगे समय जाएगा तो और सद्गुण कम हो जाएंगे। जैसे हमारे बचपन के टाइम पे एक 8वीं क्लास में एक कैंप के अंदर हम लोग गए थे शिविर में, तो वहाँ एक लड़के ने एक सिगरेट पिया था तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसी दिन रस्टिकेट कर दिया उसको। आज नहीं करते रस्टिकेट क्योंकि आज सिगरेट पीना बहुत कॉमन हो गया है। अगर और कुछ करेंगे तो बड़ी बात होगी तो फिर वो निकाल देंगे उसको, लेकिन आज सिगरेट पीने स्कूल से निकालते नहीं है, दारू पीने पर भी नहीं निकालते क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब कलयुग आगे बढ़ता है तो हर नया दिन हर एक और दुर्गुण को लेकर आता है, अधोगति को लेकर आता है। और 50 साल हम जिएंगे ना, सद्भाग्य से या दुर्भाग्य से, तब बहुत बड़ा डिफरेंट सीन रहेगा दुनिया में। लेकिन ये सब चीज़ में केवल एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि जैसे कलयुग का समय दिन ब दिन, साल साल, महीने महीने खराब होते जाएगा, वैसे ही भगवान का नाम और दयालु होते जाएगा। और आपको आज भगवान का नाम लेके जो मन लग रहा है और लाभ मिल रहा है उससे कई गुना अधिक लाभ उस बुरे समय में मिलेगा। क्योंकि तो भगवान देखते हैं कि इतना बुरा समय में अभी क्या आदमी करेगा, तपस्या क्या करेगा, कौन सा व्रत करेगा, वो सुबह कैसे उठ पाएगा, इतना गर खराब समय आ गया है। तो वही नाम जो भगवान का है वो और अधिक दयालु रूप में आपके सामने प्रकट होगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। कलयुग चारों युगों में सबसे खराब युग है। कलिर दोषेर निधिर राजन अस्ति एको महान गुण। कलि को ना दोषों का सागर बताया गया है, केवल एक दो दोष नहीं, 10-15 दोष नहीं, ओशन ऑफ फॉल्ट्स। उसमें क्या नहीं है, सब गलत है, कुछ भी अच्छा नहीं है जो बाकी युग में हुआ करता था। लेकिन संत लोग ऐसा होने पर भी उस कलयुग के समय की पूजा करते हैं। आप बोलेंगे अरे बुरी चीजों की पूजा क्यों करते हैं आप, तो दोषों का सागर है फिर भी पूजा क्यों करते हैं। बोले उसमें इतने दोष होने पर भी एक ऐसा गुण है, अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ऐसे बुरे समय पर एक अच्छा गुण ऐसा है कि अगर वो भगवान के नाम का कीर्तन का सहारा लेता है, भगवान के नाम के गुणगान का आश्रय लेता है, तो वो इसी खराब समय से भी पार हो जाएगा और भगवत धाम में, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य में अपने आप को पाएगा, जो बाकी युगों में इतना आसानी से नहीं होता है। अच्छे युग होने पर भी बहुत तपस्या, बहुत सालों साल तक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए समय का वैल्यू है। एक तरफ से हम कलयुग में हैं जो बहुत बुरा समय है, सद्गुण कोई नहीं है, बहुत डेंजरस है, असुरक्षित है, सब तरफ से सद्गुण कोई दिखाई नहीं पड़ता है, सब समाप्त होते जा रहे हैं सद्गुण। और एक तरफ से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग और आसान और आसान और आसान हो जाता है। वो समय जो है कलयुग का, उसमें जैसे मैंने बताया, दिन में सुबह का समय, 15 दिन में एकादशी का समय, साल में 4 महीने का समय, 4 महीने में भी कार्तिक का समय जो है वो सबसे दयालु है। इसलिए कार्तिक में सब लोगों को कुछ ना कुछ भगवान के नाम का व्रत लेना चाहिए। कठोर व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके बस में है। मैं तो कभी कभी ऐसा बोलता हूँ कि जो 16 माला कर रहे हैं उनको बताता हूँ आप 4 माला रोज एक्स्ट्रा करो। लेकिन उन्हें बहुत, प्रभु जी 16 माला करते करते नाक में दम आता है, तो फिर हम कहेंगे कि 4 माला मत करो, 2 माला करो एक्स्ट्रा। प्रभु जी 2 माला के लिए 15-20 मिनट कहाँ से निकालने करो, बहुत बहुत काम होता है, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, 1 माला एक्स्ट्रा करो, ये 1 माला भी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा एक काम करो आप, 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र एक्स्ट्रा बोलो इस महीने में केवल 11 बार। इसको 2 मिनट भी लगेंगे नहीं, आपको 2 मिनट भी लगेंगे नहीं, क्योंकि एक महामंत्र बोलने के लिए कुछ 10 सेकेंड लगते हैं। तो 11 बार बोलोगे कितना सेकेंड लगेंगे, 1 मिनट 110 सेकेंड लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। अभी अगर आप बोलेंगे मेरे पास 2 मिनट नहीं है, तो फिर मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है आपकी 2 मिनट भी नहीं है तो क्या करेंगे। अरे एक मोबाइल का मैसेज पड़ेगा ना व्हाट्सएप का, तो भी 5 मिनट जाते हैं, समझ में नहीं आता आपको 5 मिनट कब गए आपके। और मेरा ऐसा विश्वास है इस बात का कि मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर लोग घंटों घंटों बिताते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कब घंटे बीत गए। 7 बजे ऑफिस से आया और देखने लगा तो जो आँख खुली तो 8:15 हो गए। अभी तो स्नान भी करना है, टीवी भी देखना है, बहुत सारा काम करना है। तो दुर्भाग्य बहुत है हमारा, लेकिन सद्भाग्य भी साथ में मुमकिन है और मिल रहा है। तो ये कार्तिक महीने में ऐसे थोड़े बहुत भगवान के नाम का कीर्तन जप क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये अगर नियम से आप 30 दिन करोगे तो केवल इतना सा व्रत करने से उसका लाभ क्या है कि आप अपने आप को इस जीवन के अंत में भगवत धाम में पाओगे। आप बोलेंगे बड़ा आसान कर दिया है, तो विश्वास नहीं होता इस बात पर। जैसे कोई कहेगा आपको कि 1 रुपये यहाँ पर पेमेंट करेंगे ना, 1 रसीद देंगे आपको 1 रुपये की, और आपको यहाँ से ट्रेन पकड़ के नरीमन पॉइंट जाना है, वो रसीद दिखाएंगे तो 1 करोड़ मिल जाएगा आपको। तो पहले तो आप बोलेंगे ये तो बकवास है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये झूठ मूठ का है। क्योंकि वास्तविक अगर आप वहाँ जाएंगे रसीद लेकर, आपको 1 करोड़ मिलेगा, तो आपको श्रद्धा होगी, हाँ जो कहा था ना मीरा रोड के अंदर वो सत्य है। आप भी करो, फ़ोन करके बोलेंगे लोगों को, आप भी 1 रुपये का रसीद ले लो, थोड़ा सा मेहनत करो, गर्दी के ट्रेन में आ जाओ, इधर 1 करोड़ मिल रहा है, ये हकीकत है। वैसे ही है, ये यकीन करने में मुश्किल है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्रत का मतलब होता है जो नियम से किया जाता है, संडे संडे नहीं करते उसको, रोज 30 दिन तक आप करेंगे, जो भी आपको हो सके उतना करिए आप। मैं तो कम से कम 11 बोला आपको, आपको 21 करिए, 50 करिए, 108 एक माला पूरी करिए, हरकत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 30 दिन अगर लगातार आप करेंगे नियम से, तो वो आपका व्रत हो जाएगा और व्रत संपूर्ण भी होगा, सिद्ध भी हो जाएगा। और केवल एक जीवन में, एक कार्तिक में एक बार व्रत 30 दिन का करने से आप भगवत धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी जितने भी दोष हमारे अंदर होंगे वो सब भगवान उसका टेक केयर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, क्या करना है उसका। इतनी महिमा है इस महीने की, इसलिए जगह जगह जाकर हम बता रहे हैं आपको, लोगों को जाकर। और एक कल्प होता है, समय कभी बात चलने समय है, एक कल्प का समय जो है वो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये चार युग जो है ना, ये मिलकर एक कल्प बनता है। उसका समय होता है 43,20,000। चार युग जब मिलेंगे ना तो उसका समय इतना होता है। ऐसे लाखों लाखों कल्प के सालों में अगर आप 43,20,000 ईयर्स को लाखों से गुणित करेंगे तो कितना समय होगा, हमको समझेगा भी नहीं इतना समय में। उतने समय में हम जितना पाप नहीं कर सकते हैं उतना पाप एक दीपक भगवान को ये महीने में अर्पण करने से नष्ट हो जाता है। जितना आप सोच नहीं सकते कितना मैं कर सकती हूँ कि करूँगा, उतने सारे पाप जो हमारे कल्पना के आगे मेहनत करके भी नहीं करेंगे कर सकते, इतना पाप एक दीपक दान करने से नष्ट हो जाता है। फिर भी आप अविश्वास व्यक्त कर सकते हो, ये भी कैसे मुमकिन है, तो नॉनसेंस है, मत करो विश्वास, लेकिन हो रहा है। आपकी जो पार्टी है ना, पार्टी स्लेट, वो साफ हो जा रही है। करना क्या है, केवल 15 सेकंड को रेडीमेड बना बनाया हुआ दीपक आपको जलाकर हाथ में देंगे, उसको आपको घुमाना है खाली बस। लेकिन घुमाते वक्त क्या करना है, अपने प्रेम और भक्ति उसमें अर्पण करना है, जो आपका है। ना दिया आपका है, ना घी आपका है, ना कैंडल आपका है, कुछ नहीं आपका, आपका खाली प्रेम और भक्ति है। उतना तो हम कर ही सकते ना, ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको दीपक लेकर जंगल में जाना पड़ेगा, फिर 11 दिन उपवास करना पड़ेगा, 12वें दिन उपवास करने के बाद जब दीपक घुमाएंगे तब आपके पाप नष्ट होंगे, ऐसा नहीं बताया जा रहा है आपको। इधर के इधर ऑन द स्पॉट हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में शंकर जी पार्वती को, कृष्ण भगवान सत्यभामा को, नारद मुनि किसी भक्त को, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर इसका वर्णन किया गया है। क्यों करते भगवान ऐसे, बताओ आप? वो हम सब लोगों को अपने धाम में वापस चाहते हैं। जैसे एक माँ और पिताजी क्या चाहते हैं, खोया हुआ बेटा जो है वो घर पर वापस लौट के आए, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए कि वो आ जाए लौट के। वैसे हमारे भगवान हम सबको यहाँ पर देखकर, दूर उनसे देखकर बहुत दुखी होते हैं, और वो अपने को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रलोभन देते रहते हैं। आओ भाई आ जाओ, ये करो तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा, आ जाओ मेरे पास लौट के आओ, यहाँ पर कष्ट भोगने के लिए मत रहो। इसलिए इस महीने का इंतजाम भगवान ने किया है, और हम लोग भी इसी के लिए दीपदान का आयोजन संध्या जागृति में दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे, मंदिर में सुबह और शाम 2 बार करते हैं, ताकि आपको समझो यहाँ जाने का मौका नहीं मिला, यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर बिजी हो गए, तो कहीं ना कहीं तो आपको एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, और ऐसे भी व्यवस्था है, समझो आप शाम को 8 बजे मंदिर हमारे नीचे पहुँचते हो, उस समय तो दीपदान का समय नहीं है, फिर भी अगर आप हमारे डिपार्टमेंट में आओगे, बोलेंगे एक दीपक है क्या, तुरंत आपको देंगे और चला के आप मंदिर में अपने आप उसको अर्पण कर सकते हो। ऐसी भी व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि ये भगवान की दया है, हमारी दया नहीं है। भगवान करुणा के सागर है, उन्होंने ये व्यवस्था की है, उनकी करुणा जो है वो आप तक हम लोग पहुंचाने का खाली प्रयास कर रहे हैं। हमारी करुणा नहीं है, वो उनकी करुणा है, खाली उसको हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं। इस अवेलेबल सब जगह अवेलेबल नहीं होती है। मेरा स्टेशन पे जाएंगे तो दीपक मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा, पैसे देकर भी वहां पर स्टॉल नहीं होगा उसका, वो भी तेल में भिगाया होगा, घी में भिगाया नहीं होगा, अगर मिलेगा तो भी, हमने स्टॉल लगाया तो भी। यहाँ पर आपको रेडीमेड घी में भिगाया हुआ दीपक प्राप्त हो रहा है भगवान विष्णु को, दामोदर को अर्पण करने के लिए। और इतना भाग्य है इसके अंदर कि हम लोग साल भर उसका वेट करते, देखे कभी ये महीना आएगा, और जब ये महीने का लास्ट दिन आता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि अगले भी कल से ये नहीं होगा। फिर भी हम लोग रोज भगवान को घर में दीपक अर्पण करते हैं, लेकिन हमको पता है कि नेक्स्ट डे जो अर्पण करेंगे उसका लाभ कल के इतना नहीं होगा, आज कल तक तो लाभ था वो समाप्त हो गया, उसका पीरियड अभी समाप्त हो गया, अभी नया महीना शुरू हो गया, उसका फिर 1:1 जितना देंगे उतना ही लाभ है, डिस्काउंट नहीं होगा उसके अंदर। अभी देखिए आप यशोदा मैया, इस महीने में हमने ये गीत गाया अभी दामोदर अष्टकम, इसमें सत्यव्रत मुनि ने यह गीत लिखा है, सत्ययुग में लिखा है गीत, ये इतना सुंदर वर्णन है इसके अंदर। भगवान ने जब माखन चुराया अपने घर में मटका तोड़कर, तो मैया को पता चला, बड़ी लंबी कहानी है, तो मैया उनको पकड़ने के लिए डंडा लेकर भाग रही है उनके पीछे, तो क्या हो रहा है, तो भागते समय भगवान के कान में जो कुंडल है वो आगे पीछे हिल रहे हैं, मकराकृत कुंडल, और वो कुंडल में जो मणि है, जो रत्न माणिक लगाए गए हैं, उसका जो प्रकाश है वो उनके नीलों गालों पर गिर रहा है, और वो प्रकाश जो नीले गालों पर गिर रहा है वो भी हिल रहा है, क्योंकि कुंडल भी हिल रहे ना, इतना सुंदर दृश्य है, और माता भी भाग रही है। और फिर क्या हो रहा है, जब माता जब भाग रही है तो माता के सर के जो बालों के ऊपर जो फूल श्रृंगार किया है वो फूल भी जमीन पर गिर रहे हैं, और माता भाग रही है, उसके पीछे बच्चा आगे भाग रहा है, डंडा दिखा के भाग रहा है, बहुत देर तक भगाया भगाया भगाया, फिर क्या हो रहा है, माँ की हाथ में लठिया देखकर बालक बार बार रो रहा है, हाँ दोनों हाथ से अपने आंखों को मल रहा है, तो आंखों में जो काजल लगाया है वो भी सब फैल रहा है सब जगह पर, इधर तो किरण हिल रहे हैं, उधर काजल फैल रहे हैं, और अश्रु भी आ रहे हैं उसका मिक्सचर से, आंखों के अराउंड सब काजल फैल रहे हैं, दोनों हाथों से मसल रहा है, उसके नेत्रों में भय है, हाँ पता है किसके नेत्रों में भय है मालूम है आपको, जिसको देखकर साक्षात मृत्यु भी भयभीत हो जाता है, हाँ साक्षात मृत्यु भी जिसको देखकर कांपता है भय से, वो एक बालक बनकर अपनी माता के सामने भय से कांप रहे हैं, और रोने के आवेग से सिसकियां ले रहे हैं, मत मारो मत मारो, डंडा देखकर रो रहे हैं, तो वो जब रो रहे हैं तो गले में जो माला पहनी ना वो भी ऐसे ऐसे हिल रही है, छाती हिल रही तो वो भी हिलेगी ना, तो भगवान लीला क्यों कर रहे हैं, प्रेम की वजह से कर रहे हैं, मृत्यु भी उनको देखकर मूर्तिमान मृत्यु भयभीत हो जाती है, और वो एक ब्रजवासी औरत के हाथ की डंडी को देखकर कांप रहे हैं, केवल प्रेम की वजह से है, क्योंकि वो प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा सब लीला कर रहे हैं। फिर ऐसे वात्सल्य प्रेम से बंधे गए भगवान को मैं वंदन करता हूँ, ऐसे बोलते हैं, फिर भगवान बंधन में आ जाते हैं, बांध देते हैं उनको, पहले पकड़ लेते हैं उनको, तो मैया कहते हैं अरे बाप रे, मेरे हाथ में डंडा देखकर इतना कांप रहा है, बहुत ज़्यादा ही डर रहा है, इतना अधिक डरना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डरा तो काफ़ी है, डंडे का पर्पज फुलफिल हो गया, जितने डंडा लिया था वो हो गया काम, अभी और ज़्यादा डंडा देख देख कर डराने की जरूरत नहीं, डंडा फेंक देती है वो, क्योंकि वो भी बोलता है मैया वो डंडा मत लेना हाथ में, जिसकी भवे जब उठते ना तो देवता लोग आकाश में कांपते हैं, जिसके डर से चंद्र और सूर्य घूमते रहते हैं आकाश में, उनके डर से घूमते रहते हैं, वो भी कांप रहे हैं वो डंडे को देख, इतना सुंदर लीला है। फिर माँ डंडा फेंक देती है, फिर उनको बांध देती है, तो बांधते हुए रो रहा है बहुत बहुत रो रहा है, लेकिन बरहवार बांधने का प्रयास करते हैं तो दो उंगली कम पड़ जाती है उसके अंदर, फिर जोड़ती है दोरियों को, फिर लंबा दोरी करती है, फिर गोल घुमा कर लेते हैं तो वापस दो उंगली कम हो जाती है, बोले क्या रहस्य है ये, तो वो डर रही है, समझ में आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा है, तो वही आचार्य बताते हमको कि भगवान को बांधना है, भगवान को कौन बांध सकता है, वो पूरी दुनिया को बांध के रखा है उन्होंने, कर्मों के बंधन में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी की श्रृंखला में बांध के रखा है, वो सबको बांध के रखते हैं, वो उनको कौन बांध सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम की वजह से मैया उनको बांध रही है, कोशिश कर रही है, और इतना सारा कोशिश करने के बाद में क्या हो रहा है, वो बांध नहीं पा रही उनको, फिर उनके कपाल पर पसीना आ रहा है बहुत, वो पसीना देखकर भगवान जो बालक रूप में है उनको दया आती है, अरे कितना मेहनत कर रही है, चलो मैं बन जाता हूँ, अभी कोई बात नहीं बांध दो, तो गांठ लग जाती है, तो आचार्य लोग समझाते हैं कि ये दो उंगलियाँ किस प्रकार का हमको समझाती है, क्या हमारे लिए शिक्षा क्या है उसके अंदर, तो दो उंगलियाँ जो है, एक उंगली जो है वो प्रयास की है, मेहनत, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत जब 100% करते दिल से हम, तो भगवान कृपा करते हैं। एक उंगली 100% मेहनत की है और दूसरी उंगली भगवान की कृपा की है। जब दोनों एक बार आ जाता है तो हमारा काम हो जाता है। किसी भी चीज़ को भगवान के विषय में अगर प्राप्त करना है तो हमारी तरफ से 100% मेहनत होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। 100% जब मेहनत करेंगे तो भगवान की कृपा आएगी, और भगवान की कृपा आएगी तो सारा आपका काम हो जाएगा। जो दुर्लभ भगवान है वो भी सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। आपकी मेहनत आपकी तरफ से 100% होनी चाहिए। आपका 100% बहुत छोटा सा होगा, हो सकता है, लेकिन वो आपका 100% होना चाहिए। जैसे कोई बालक जो है ना, हमारे बचपन में हम लोग क्या करते थे, वो कुछ बड़े हमारे भाई थे, वो लंबे थे, हम लोग छोटे थे, तो बड़े भाई जो थे अपने हाथ से ही शर्ट को ऐसे खूंटी पे टांगते थे, और हमारे लिए खूंटी बहुत ऊंची हुआ करती थी। हम लोग कूदते थे बहुत बार, लेकिन पहुंचते नहीं थे। तो हम लोग बहुत बार कूदने के बाद क्या करते थे, हमारे भाई हमारा शर्ट हमारे हाथ से लेकर खुद अपने हाथ से ऐसा लगाते थे। तब सोचते थे हम कभी इतने बड़े होंगे से अपने हाथ से लगा सकते हैं उधर। तो जब हम मेरे बड़े भाई देखते थे कि मैं कई बार कूद चुका हूँ, थक गया हूँ, तो फिर मेरे हाथ से वो शर्ट लेकर ऐसे आराम से उधर लगाते थे। मतलब क्या, जब मैंने 100% मेरा मेहनत लगाया तो उनकी कृपा मुझ पर होती थी और वो ऐसा निकाल के आराम से लगाते थे। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। उसी तरह से भगवान को प्राप्त करना तो जीव के लिए बहुत मुश्किल है, अपने आप पे तो प्राप्त कर ही सकता नहीं वो। लेकिन जब वो खुद की तरफ से 100% मेहनत करेगा, उसकी 100% मेहनत बहुत छोटी सी होगी, कोई भगवान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है वो। लेकिन जब वो 100% मेहनत करेगा तो भगवान बोलेंगे वाह भाई, अपना मेहनत तो कर लिया उसने, अभी बाकी का काम मेरा, मैं करता हूँ। जब आपका 100% मेहनत भगवान देखेंगे तो अपनी सारी ताकत आपको लगा देंगे उसके पीछे, और वो जो बहुत मुश्किल था वो एकदम आसान हो जाएगा। उसी तरह से यशोदा मैया ने अपनी मेहनत की बांधने के, भगवान को भगवान नहीं बंधे। जब भगवान ने चुन लिया कि अब मैं बंध जाऊंगा तो बंध गए। तो यशोदा मैया ने नहीं माना उनको, भगवान ने तय किया अभी मैं बंध जाता हूँ, तो बंध गए, क्योंकि उनको कौन बांध सकता है। और बांधने के बाद भी फिर क्या हुआ, बोले अभी मुझे बहुत काम है, तो बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, अभी तक मुझे विश्वास नहीं था कि तू चोर है। सब लोग गोपियाँ आके बताती थी कि तुम चोर है, और मैं मानती नहीं थी। मैं उनको बोलती थी रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ उसको, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं इस बात पर। मेरे घर में इतना श्रेष्ठ मक्खन बनाती हूँ मैं, कमल की खुशबू वाला, कमल की खुशबू वाला घास मैं उन गायों को खिलाती हूँ, फिर उनके दूध को कमल की खुशबू आती है, ऐसा दूध मैं जमाती हूँ, ऐसा कमल का दूध जब मैं जमाती हूँ तो उस दही को जब मैं मंथन करती हूँ तो और स्ट्रांग स्मेल वाला कमल वाला जो है मक्खन बनता है मेरे घर पे, और मैं उसको गले तक खिलाकर बाहर भेजती हूँ। जब भी बाहर जाता है खेलने के लिए तो गले तक उसको खिलाती हूँ, बस बस बोलता है, पेट भर गया ऐसा बोलता है, तब मैं बंद करती हूँ, इतना खिला के भेजती हूँ। और आप बोल रहे हो कि आपके घर में आके चोरी करता है, कैसे विश्वास करूँ मैं, जिसको सबसे बेस्ट मक्खन मैं मेरे घर पे पेट भर के गले तक खिलाकर भेज रही हूँ, और तुम लोग आके बोलते हो कि तुम्हारा मटका फोड़ के चोरी करता है, ये मुझे विश्वास ही नहीं होता है। एक बार तो कम से कम उसको पकड़ के लेके आओ ना। तो कभी भी गोपियों के पकड़ में आता नहीं था ये, हर बार मक्खन चुरा के वहीं से भागता था, और गोपियां केवल हाथ मल के बैठती थी, कभी अरे अभी भी पकड़ा था निकल गया हूँ। लेकिन इस बार मैया बोल रही है मैंने आज तक विश्वास नहीं किया, लेकिन आज तुमने मेरे ही घर पे चोरी करके मटका फोड़ के ये विश्वास दिला दिया कि तुम ही चोर हो। अभी तुम को बांध के रखा है, इधर से हिलने का काम नहीं है, मुझे बहुत कारा काम है, पड़े रहो यहाँ पर। वो चले जाते अंदर, सोचती नहीं करे कुछ शरारत करेगा आगे जाकर, कि जैसे चली जाती है तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ ऐसे करूँगा ना माँ को भी पछताना पड़ेगा। अभी तो बड़े गुस्से में चली गई है, बोली ऐसा कुछ करूँगा मैं आज जिंदगी भर पछताएगी, कभी मेरे को बांधने का काम नाम लेगी नहीं। तो उखल को लेकर वो खींचते 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 घर के बाहर गए, घर के बाहर अगले कमरे में गए, अगले कमरे से बरामदे में आए, बरामदे से आंगन में आए, आंगन में से बाहर गए, वहां पर दो बड़े पेड़ लगे हुए थे, उसके अंदर उखल को अटकाया और खींच के दोनों पेड़ को घिरा दिया। ना जोर से आवाज आया धड़ाम करके कि खेत में से नंद बाबा भाग के आए, क्या हुआ देखते तो क्या है, इतने बड़े पेड़ गिरे हैं, उसमें से इतना कन्हैया बीच में है उसके, अगर इसमें से एक पेड़ अगर यहाँ गिरता तो यहाँ का यहाँ गिरता तो उसके ऊपर गिरता, पता नहीं क्या होता उसके बाद में। सब देख के डर जाते हैं, बोलते किसने बांधा किसने बांधा, बोलते मैया ने बांधा। ऐसा कंप्लेंट करो पे बोलते ना, अभी तो अच्छा मौका है। देखो समय समय की बात है ना, तो बांधा जा रहा था अभी पापा साथ में नहीं थे, कंप्लेंट करने के लिए कोई नहीं था, अभी समय बढ़िया समय है, पापा मेरे फेवर में है, कर लो मम्मी की कंप्लेंट। मैं अभी मम्मी के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, उसने मुझे बांधा था, तो पहले तो छुड़ा देते उसको, छोड़ के फ्री करते, फिर गले मिलता है पापा की, बोलता है तू मम्मी के पास नहीं जाएगा तो तुम्हें स्नान कौन कराएगा? तो कन्हैया बोलता है तू बाबा, मतलब आप करोगे स्नान मुझे, फिर वो मक्खन कौन खिलाएगा? तू बाबा, फिर कपड़े कौन पहनाएगा? तू बाबा, फिर बाहर खेलने के लिए कौन ले जाएगा? तू बाबा। जितने सारे काम मैया करती है सब सारे प्रश्न पापा पूछ लेते हैं कि अभी ये कौन करेगा अगर तुम मैया के पास नहीं जाएगा, तो कन्हैया पापा को बोलते कि तुम करोगे सब अभी आप इसके बाद में। तो वहां से यशोदा भी भाग के आती है आवाज़ सुनकर, लेकिन पहले पापा के गले मिलता है ना वो, पापा के कान में बोल रहा है कि मैं नहीं बाबा मम्मी से बात करूंगा अभी, तो मम्मी सुन रही है कि पापा सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद 50 प्रश्न पूछे तो उसने तू बाबा यही उत्तर दिया। तो मम्मी को क्या लग रहा है, अरे मेरी सारी सेवाएं समाप्त हो गई, मेरी जो इतनी सेवा थी इसके लिए वही समाप्त हो गई, तो मैं किस लिए जीऊँ अभी, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। हमको लगता है कैसे, हम भगवान की कुछ भी सेवा नहीं करते लेकिन हमको लगता नहीं कि भगवान की सेवा करना जीवन व्यर्थ है, लगना चाहिए हमको भगवान की सेवा ही जीवन है। अगर इस जीवन में भगवान की सेवा नहीं है तो ये जीवन जीवन ही नहीं है। जिसको भगवान की सेवा में आस्वादन रुचि आ गई है उसके लिए वही सर्वस्व है। और वो एक बार जिसने भगवान की सेवा करके उसमें रुचि अनुभव किया है, उसको वो छिने जाने पर इतना दुख होता है कि वो बोलेगा अभी मैं जीऊँ किसके लिए। समझो किसी के साथ प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो गया, इतना प्यार, इतनी खुशी मिली है, एक दिन वो बोलता है कि अभी तुमसे शादी नहीं करूँगा मैं, तो वो क्या सोचती है, मैं अभी आत्महत्या कर लूँगी, तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि एक बार उस प्रेम का टेस्ट कर लेना उसने, लगता है तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सब कुछ हो, और तुम अभी छोड़ के जा रहे हो तो मैं भी मर जाऊँगी, ऐसे हम फिल्मों में देखते हैं। क्यों मैं एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि एक बार किसी ने ऐसा अच्छा अनुभव किया और अगली बार वो अनुभव आपको नहीं मिलने वाला है, जाने वाला है आपके जीवन से, तो आपको लगता है कि मर जाना अच्छा है, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा इसकी वजह से। तो यशोदा मैया ने दिन रात भगवान की सेवा करके ऐसे आनंद का अनुभव किया है, अभी कन्हैया बोल रहा है कि उसमें से एक भी सेवा आपको नहीं मिलने वाली है, उसको लग रहा है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। तो फिर बाबा बोलते हैं कन्हैया के कान में, देखो बेटा मैया इतनी रो रही है, वो तो मरने की सोच रही है, जरा देख तो ले उसको, कम से कम मुड़ के देख लेना उसके ऊपर। तो जब कन्हैया मुड़ के देखता है माँ की ओर, तो बड़ी दया आती है उसको, और पापा का गला छोड़कर तुरंत भागता है मम्मी के गोद में, मम्मी उसको गले लगा लेती है, फिर सब गुस्सा समाप्त हो जाता है। ऐसी ये सुंदर लीला है। हाँ क्या बोल रहे मैया, फिर आपका मुक्कमल, मतलब कन्हैया का मुक्कमल जो है ना वो ब्लू रंग का है ना, नीले रंग का है, लेकिन बार बार मम्मी के द्वारा चूमने से वो लाल भी हो गया है, मतलब ब्लू और लाल एक साथ हो गया है। इदम ते मुखाम बोजम अत्यंत नील है, बार बार चुम रही है मम्मी उसका। आप में से कितने लोग माँ हैं बताओ, कितने लोगों के बच्चे हैं, क्या आप बता सकते हो दिन में कितनी बार बच्चे को चुमते हो? मैं मेरी वाइफ को भी देखता हूँ, हजारों बार चुमते हैं, हजारों बार, समाधान ही नहीं होता है, वो बच्चे के गालों को चुम चुम के समाधान ही नहीं होता है, कभी यहाँ चुमते, कभी यहाँ चुमते, कभी इधर चुमते, कभी उधर चुमते, हाथ को चुमते, इसको चुमते, उंगली को चुमते, इतना प्रेम है बालक के प्रति कि कितनी बार भी चुमने पर समाधान नहीं होता है। वो तो हमारे और आपकी बात कर रहे हैं हम लोग, यशोदा माँ का प्रेम कितना होगा भगवान के प्रति, और भगवान कितने सुंदर और कितने आकर्षक और कितने मोहक होंगे। तो वो चुम चुम कर नीले रंग का शरीर वाला जो बालक है उसका गाल लाल हो रहे हैं। कहते हैं कि ये दृश्य जो है कि जिसमें माँ यशोदा कृष्ण को चूम रही है, ये दृश्य देखने से ही जीवन की परिपूर्णता है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना प्रेम भगवान और भगवान के भक्त के बीच में हो रहा है जिसको हम देख रहे हैं, यही जीवन की परिपूर्णता है। बोलते सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि माता अपने बालक को चूम रही है, मुझे इस दृश्य को देखने बिना और कोई वरदान नहीं चाहिए, ऐसा वरदान दो भगवान कि ये दृश्य मेरी आंखों में बना रहे जन्म जन्मांतर तक। मनस्या विरासताम अलम लक्ष्य लाभ है, जन्म जन्मांतर तक मेरे आंखों में यही दृश्य बना रहे कि यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया को अनंत बार चूम रही है, और लाख लाख वरदान मेरे लिए क्या फायदा है उसका, आई डोंट वॉन्ट। मुझे बाकी अनंत लाभ वरदान नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे वो। और वो भी दिखा रहे, वो कह रहे भगवान भी लोगों को दिखा रहे मुझे प्राप्त करना है आपको, तो कोई तपस्या कोई ध्यान तप वगैरह व्रत वगैरह करके मुझे आप प्राप्त नहीं कर सकते, केवल प्रेम और भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हैं, बाकी किसी तपस्या करने से मुझे बांध नहीं सकते आप, लेकिन प्रेम के बंधन में जरूर बांध सकते हैं। भगवान जो है यशोदा के प्रेम के बंधन में बंध गए, रस्सी के बंधन में बंध नहीं गए। सत्यवत मुनि बता रहे हैं यहां पर कि इतना सुंदर यह है कि और मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नमोक्षे ग्रहो मस्ति दामोदरे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। दुनिया के लोग मोक्ष के लिए तड़पते रहते, तपस्या करते रहते कि मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, लेकिन भगवान कहते सत्यव्रत मुनि यहां पर कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का निवास भी नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे ताकत भी नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है कि आपका जो ये बाल स्वरूप है, माता आपको चूम रही है, ये दृश्य मेरे हृदय में बार बार लक्ष्य बार बना रहे, बस आई वॉन्ट नथिंग एल्स। ये आदमी तभी बोल सकता है जब उसने भगवान के प्रेम का स्वाद ले लिया है, नहीं तो बोलेंगे क्या प्रभु जी एक घंटा हमारा टाइम पास कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता है जो सब कल्पना है उसके बारे में खुला खुला कर बोल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इसका एक कण का भी अनुभव किया है उनके लिए 100% सत्य है। जिन्होंने केवल मद का वर्णन किया है लेकिन मद कभी चखा नहीं है, बोलेंगे नहीं सब क्या बेकार में बोतल का वर्णन करते जा रहे हो, लेकिन बोतल का एक घंटा प्रवचन किया उसके बाद बोतल खोला नहीं है उसको चखा नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है और क्यों इतना बोल रहे हैं उसके बारे में। इसलिए भक्ति जो है ना वो अनुभव की बात है, प्रवचन अच्छा है जब तक हमको प्रेरणा मिलती है प्रवचन से तो अच्छा है, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद में अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो सारा प्रवचन बेकार है, क्योंकि भक्ति जो है वो अनुभव की बात है, जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक सब चीज़ कल्पना है, कोई फायदा नहीं उसका। और ये जो यशोदा माता का अनुभव है वो आपको भी आ सकता है, भगवान का नाम लेने से ये दिव्य अनुभव आ सकता है, तब जाकर ऐसे आप बोल सकते हो कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस आपका दृश्य मेरे सामने बना रहे, यही परमोच्च आनंद का मेरा उगम है, यही मुझे मिलेगा, मेरा जीवन धन्य है। ये महीने का महिमा यही है, ये महीने में इसी लीला को गाते हैं हम लोग सुबह शाम, फिर वो मांग करते हैं कि पेड़ बने दोनों, वो कौन बने थे पेड़ दोनों, कुबेर के पुत्र थे वो, कुबेर भगवान के खजांची हैं, ट्रेजरर, बहुत बड़े देवता हैं वो, उनके ये दो बेटे हैं, बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे, हाँ शराब पीकर लड़कियों के साथ में नदी में नंगा नाच कर रहे हैं, एक्चुअल नंगा नाच कर रहे हैं। नारद मुनि वहाँ से आते हैं तो लड़कियाँ सब भाग जाती हैं, वो तो होश में रहती हैं, वो तो तुरंत अपने आप को छुपा लेती हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे ही नशे में चूर नाच रहे हैं तो नारद मुनि को बुरा लगता है, कह रहे इतने अच्छे पिताजी के अच्छे बेटे हैं ये, कैसे बिगड़े हुए हैं, अभी मैं छोड़ दूंगा इनके ऐसे तो ऐसे बिगड़े ही रहेंगे वो और बिगड़ते जाएंगे, तो उनको शाप देते हैं, बोलते हैं तुम नंगा घूमने का प्रयास कर रहे हो, बहुत तुमको कपड़ा उतार के खूब आनंद लेने की इच्छा है, जाओ तुम लोग पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ कोई कपड़ा नहीं पहनता ना, शास्त्र में विधान है जो अपने शरीर से कपड़े उतारता है या कम से कम कपड़े पिता पहनता है और अधिक से अधिक शरीर को दिखाता है उस व्यक्ति को अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ता है और हजारों साल उसी जगह पर खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन में शरीर को अच्छी तरह कपड़े से ढकना चाहिए, सब पार्ट कवर करना चाहिए, और हम लोग और खोलने लगते हैं तो अगला जीवन लकड़ी का यानी पेड़ का निश्चित है हमारे लिए, तो वो लोग पेड़ बन जाते हैं, फिर वो बहुत रोते हैं, उनकी नशा जो उतर जाती है शाप सुनने पर, है ना, अभी तो मजा कर रहे देवता के पुत्र के रूप में, अभी तो मालूम पड़ा कि अभी देवता के पुत्र समाप्त हो गए, अभी देवता के पुत्र का भाग्य समाप्त और अभी अगले घड़ी से हमको पेड़ बनकर रहना है, तो कोई देवता के पुत्र करके हमको आदर नहीं करेंगे, अरे ये दो पेड़ है ना ये कुबेर के पुत्र है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, सब पेड़ समान। तो रोने लगे वो, अभी होश आ गए उनको, नारद मुनि से प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप तो बड़े मुनि हो, आपका तो शाप सत्य होगा, लेकिन कुछ डिस्काउंट तो दे दो हमको, देखो अभी मस्ती तो कर लिया ना पूरा, शाप तो मिलने के बाद डिस्काउंट मांगते हैं। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको पश्चाताप हो रहा है लेकिन हमने शाप तो दे दिया है, वो सत्य होगा ही, लेकिन एक उसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको, आप जब पेड़ बनोगे तो गोकुल में बनोगे, तो जब ये आगे के युग में भगवान अवतार लेंगे तो ये उनके घर के आंगन में आप खड़े रहोगे, और जब तक आपका उद्धार होने का समय नहीं आएगा तब तक सारी लीला आप उनके आंगन में देखते रहोगे उनको, जो ऋषि मुनि तपस्वियों को भी तपस्या करने के बाद दर्शन नहीं होता है, वो आपको इस पेड़ के रूप में उनके आंगन में दर्शन होगा। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। तो उन्होंने, जब तक उनको नहीं गिराया गया तब तक भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया उधर खड़े खड़े, जीवन को धन्य कर लिया उन्होंने। और बाद में भगवान ने उनको योग्य समय पर गिराया और वो देवता प्रकट हो गए उसके अंदर से, नल कुबेर और मणिग्रीव। तब उनका मन पूर्ण शुद्ध हो गया था, सारी गलत आदतों से मुक्त हो गया था, पवित्र भक्त बन गए भगवान के वो। तो भगवान का बहुत गुणगान करते हो, और नारद मुनि का भी गुणगान करते हैं। क्यों? अगर नारद मुनि ने उस समय ये शाप नहीं दिया होता तो आज ये हमारा भाग्य उदय नहीं हुआ था। इसका मतलब साधु लोग कोई शाप नहीं देते हैं, वो शाप जो भी देते हैं वो वरदान ही होता है। अभी आप बोलो ये शाप है कि वरदान है, बोलो। अगर वैसे शराब करके उनको दुर्लक्ष करके चले जाते नारद मुनि, तो वो शराब पीते वैसे ही रहते वहां पर गलत आदत लगाते हुए। लेकिन जब शाप दिया तो क्या हुआ, भगवान के आंगन में गोकुल में पेड़ बने, भगवान का बाल लीलाओं का दर्शन हुआ, जो गौलों को वृंदावन में भी नहीं होता है। बाल लीला तो खाली यही होती है, उसका दर्शन भी हुआ, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर। जैसे भगवान आपने इन दोनों को दर्शन देकर प्रेम भक्ति का दान दिया, वैसे मुझे भी दे दो, ऐसे बोल रहे हो। और अपने धाम में शुद्ध भक्त बनकर चले जाते हैं। तो एकदम शराबी और गंदगी व्यभिचार करने वाले थे, वो शुद्ध बनकर भक्त बनकर लौट गए वो भगवान अपना अपना काम करने के लिए। फिर ये मुनि बोलते हैं कि मैं आपके पेट को बांधे हुए रस्सी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तो आपके पेट को बांधने की शक्ति किस में है, लेकिन वो रस्सी इतनी भाग्यवान है मुझे आपको पेट के चिपक खड़ी हुई है। इतना भाग्य किसका हो सकता है, परमानेंट आपके पेट को चिपकी हुई है वो। तो मैं इस रज्जू यानी रस्सी को प्रणाम करता हूँ, उसको दाम कहते हैं, दाम संस्कृत में, प्रणाम करता हूँ। और इस महीने की जो देवी है ऊर्जेश्वरी राधा रानी, उसको भी प्रणाम करता हूँ। इस बात पर हम अपना प्रवचन समाप्त करेंगे आज का। ये जो नाम है ऊर्जेश्वरी, ये एक्चुअली ये महीने की देवता है राधा रानी। नाम तो दामोदर जी का दिया है महीने को, वो दामोदर मास के हम दीप दान करते हैं, उनके नाम से व्रत करते हैं, लेकिन इन सारे व्रतों का फल कौन देती है, वो ऊर्जेश्वरी राधा रानी फल देती है। वो छुपी हुई है मतलब। तो ऊर्जेश्वरी राधा रानी को प्रसन्न हम कर सकते हैं जो एक्चुअली सब लोगों को वास्तविक रूप में प्रेम भक्ति देने वाली हैं। श्री कृष्ण भगवान भी उसके अधीन हैं, और अधिकार जो है भक्ति देने का वो भी राधा रानी को ही है। वही कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरणों के प्रति हम सब लोगों को भक्ति देती है और प्रेम देती है। तो ये दीप दान करके हम प्रयास कर दे कि उनको प्रसन्न किया जाए। तो नमस्ते तू धामने स्वरदीप्ति धामने त्वदीयो दरायत विश्वस्य धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाये। आपकी जो प्रिया है राधा रानी, नमो राधिकाये, उसको हम प्रणाम करते हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। और आप जो इस महीने में अनंत लीलाएं करते हैं प्रेम की, उसको भी हमारा प्रणाम है। क्योंकि इन लीलाओं के माध्यम से, उनको समझने से, उनको श्रवण करने से हम सब अपने बंधन को छोड़कर भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इतनी शक्ति है इस महीने में, इतनी शक्ति है इस व्रत में। इस महीने में जो व्रत करेगा, जो कितना भी पापी होगा तो भी भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। और एक महीने के, एक जीवन में, एक साल के, एक महीने के व्रत में आप जीवन के अंत में भगवत प्राप्ति करने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो सब लोगों को हमारी विनती है कि निश्चित रूप से आप लोग कुछ ना कुछ व्रत लीजिए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।